टारजन की वापसी के पिछली कैसेट कहानी में आपने सुना था
टारजन नरशी के कटहरे के साथ लगकर खड़ा हो गया। अचानक दो आदमी अपने केबिन से दबे पांव बाहर निकले। इन दोनों ने स्याह रंग के ओवरकोट पहने हुए थे और इनके चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए ये दोनों टारजन की तरफ बढ़े और इससे पहले कि टारजन को खबर हो वो दोनों इस पर टूट पड़े। उन दोनों ने टारजन की दोनों टांगे पकड़ी और आनंद फानंद से समंदर में फेंक दिया।
और रैन उसी वक्त मिसेस स्ट्रॉन्ग ने अपने केबिन के शीशे में से देखा कि ऊपर से कोई चीज समंदर में गिरी है।
आई थिंक ही इज अ मैन, लगता है कोई आदमी गिरा है, पर लेकिन शायद ये मेरा ख्याल है। हो सकता है कि किसी ने कोई फालतू चीज समंदर में गिराया, वरना तो अगर कोई आदमी गिरता तो जरूर जहाज का अलार्म बजता। ओके, सुबह को कैप्टन से मालूम करेगा।
और अगले रोज वाकई जहाज से एक आदमी गायब था। मिसेस स्ट्रॉन्ग ने जब टारजन को न देखा तो एक मुलाजिम को उसके केबिन में भेजा। मुलाजिम ने वापस आकर बताया कि मिस्टर जॉन अपने केबिन में नहीं है और उनका बिस्तर भी वैसे का वैसा ही है। चादर पर एक शिकन भी नजर नहीं आती। ऐसा मालूम होता है कि मिस्टर जॉन अपने बिस्तर पर सोए ही नहीं। चंद लम्हों बाद सारे जहाज में जॉन के अचानक गुम हो जाने की खबर फैल चुकी थी और मुसाफिर कप्तान से सवालात कर रहे थे। मल्लाहों ने जहाज का कोना कोना देखा मगर जॉन का कहीं पता न था। आखिर कप्तान मिसेस स्ट्रॉन्ग के पास आया। उसकी आवाज कपकपा रही थी। उसने कहा,
वेल मिस, आई एम सॉरी, मैं अफसोस के साथ पर यह न्यूज आपको देता है कि मिस्टर जॉन गुम हो गया है। कुछ समझ में नहीं आता है कि किधर गया। मेरा ख्याल है कि मिस्टर जॉन समंदर में गिर गया।
नो 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 कैप्टन, नो, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम गलत बोल रहे हो। ओह मिस्टर जॉन, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू।
इधर जॉन की मौत पर मिसेस स्ट्रॉन्ग आंसू बहा रही थी और दूसरी तरफ टारजन जो ही समंदर के ठंडे ठंडे पानी में गिरा उसने तेजी से तैरना शुरू कर दिया। वो जल्द से जल्द जहाज से दूर हो जाना चाहता था क्योंकि टारजन समझ चुका था कि उसे समंदर में फेंकने वाले कौन लोग हो सकते हैं। चंद लम्हों बाद जहाज खासी दूर जा चुका था। अब टारजन था और बहरे अफ्यानूस की बेरहम मौजी। उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने हिम्मत हारना सीखा ही न था। वो तैरता रहा। अब उसने अंडरवियर के अलावा सारे कपड़े उतार कर समंदर में फेंक दिए थे क्योंकि कपड़े तैरने में रुकावट पैदा कर रहे थे। अब सितारे एक एक करके मगरिब की जानिब गायब होने लगे और फिर मशरकी उफुक पर उजाला फैलने लगा। टारजन के बाजू और पैर अब तैरते तैरते शल हो गए थे। उसने अपने आप को अब लहरों पर छोड़ दिया। दोपहर के वक्त टारजन ने कुछ फासले पर एक बड़ा सा तख्ता बहते देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने आप से कहा,
ये तख्ता किधर से आया है? लगता है किसी जहाज का तख्ता है जो हाल ही में समुन्द्र में गर्क हुआ है।
तख्ते को देखकर टारजन के थके हुए बेजान जिस्म में एक नई कुव्वत उभर आई। वो जल्दी से तख्ते पर सवार हो गया। दो दिन और दो रातें टारजन भूखा प्यासा उस तख्ते पर लेटा रहा। इस दौरान कई बार खौफनाक शार्क मछलियों ने उसका पीछा किया और उसे हड़प करने की कोशिशें की मगर वो इनके हमलों से बचता रहा। और तीसरे दिन सुबह के वक्त टारजन को दूर, बहुत दूर समंदर में एक लकीर सी उभरती नजर आई। वो संभल कर बैठ गया। अब तख्ता लहरों पर तैरता हुआ बहता हुआ उस लकीर की जानिब जा रहा था और ये लकीर आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही थी। टारजन के जिस्म का रुआ रुआ खुशी से कांप रहा था क्योंकि टारजन को एक सरसब्ज और शादाब जजीरे के आसार दिखाई दे रहे थे। जजीरे से एक मील इधर ही टारजन ने बेताब होकर तख्ते से छलांग लगा दी और तैरता हुआ साहिल की जानिब बढ़ने लगा। टारजन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि ये तो वही जजीरा था जहां टारजन इस मुहिम से पहले रहता था और जहां टारजन पैदा हुआ था। पुरानी यादें टारजन के जहन में ताजा होने लगी और जब उसने अपने केबिन को देखा जो बरसा बरस से वैसे ही खड़ा था तो टारजन के हलक से खुशी के मारे एक नारा निकल गया,
ओह माय गॉड, ये तो मेरा अपना घर है, अपना, ये मेरा केबिन है, मेरा।
अब टारजन जजीरे के गुंजान हिस्से की तरफ चलने लगा। अब वो फिर टारजन था, अजीम टारजन, जंगल की खौफनाक दुनिया पर हुकूमत करने वाला इंसान। और फिर टार्जन ने जंगल के घने और तारीख हिस्से में पहुंचते ही वैश्याना अंदाज से अपनी आमद का ऐलान किया और फिर फौरन ही जवाब में शुमाल की जानिब से शेर के गरजने की आवाज सुनाई दी और फिर दरख्तों पर झूलते हुए बंदर खुशी से खौफ जाने लगे। वो सभी बरसों से टार्जन को जानते थे, पहचानते थे। फिर तो जंगल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आग की तरह यह खबर फैल गई कि टार्जन आ गया है, टार्जन आ गया है। टार्जन के लिए अब भूख नाकाबले बर्दाश्त हो गई थी। अब वो शिकार की तलाश में था। उसके पास एक लंबे रस्से और चाकू के सिवा कुछ और न था जो कि उसने अपने केबिन से लिया था। अब वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाता हुआ जा रहा था, बिल्कुल बंदर की तरह। और फिर टार्जन ने लंबी घनी घास में किसी जानवर के चुपकी चुपकी हरकत करने की आहट सुन ली। उसने अपने आप को शाखों और पत्तों में छुपा लिया। वो देखना चाहता था कि ये जानवर है कौन। चंद लम्हों बाद उसने उसे देख लिया। ये शेर था, शेर जंगल का एक और बादशाह। वो भी भूख से बेताब था और शिकार की तलाश में फिर रहा था। टार्जन ने मुस्कुराकर अपने आप से कहा,
ये भी भूखा है और मैं भी भूखा हूं।
अब देखने ये है कि शिकार पहले किसे मिलता है।
यकायक एक और आवाज से टार्जन के कान खड़े हुए। उधर शेर भी चौकन्ना हो गया और फिर दोनों ने एक ही वक्त में उस हिरन को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों में गुजरता हुआ उसी तरफ आ रहा था। टार्जन ने आंखें घुमाकर शेर की जानिब देखा। शेर की आंखें अब अंगारों की मानिंद दहक रही थी। वो घास में पत्थर की बेजान बुत की तरह बिल्कुल चुपचाप छुपा बैठा था। टार्जन जिस दरख्त पर बैठा था, हिरन उसी दरख्त के नीचे एक लम्हे को दम लेने के लिए रुका। टार्जन ने फिर शेर की जानिब देखा। भूखे शेर की बेचैनी बढ़ गई थी और अब उसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। टार्जन जानता था कि अगर हिरन इस तरफ से चंद कदम आगे गया तो फिर उसे शेर के खौफनाक पंजों से दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती। और उससे पहले कि शेर उछल कर हिरन पर झपटे, टार्जन ने रस्सी का फंदा बनाकर नीचे फेंका। निशाना ऐसा सही था कि फंदा ठीक हिरन की गर्दन में जा पड़ा और फौरन ही टार्जन ने उसे कस कर हिरन को ऊपर उठा लिया। वो जमीन से तकरीबन 10-12 फीट ऊंचाई पर फजा में झूल रहा था। शेर ने शिकार अपने हाथ से जाता देखा तो उसके गुस्से की इंतहा न रही। वो पूरी कुव्वत से गरजता और दहाड़ता हुआ घास से निकला और हिरन को पकड़ने के इरादे से दरख्त की तरफ लपका, लेकिन कई बार उछलने के बावजूद वो हिरन को पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। टार्जन दरख्त पर इत्मीनान से बैठा हंसता रहा।
आओ बेटा आओ, पकड़ो अपना शिकार, आओ पकड़ो।
टार्जन इसी तरह हंसता रहा और शेर मायूस होकर नफरत की नजरों से टार्जन को देखता हुआ चला गया। अब शाम के साए गहरे होने लगे थे और टार्जन जल्द से जल्द अपने केबिन में पहुंचने के लिए बेचैन था। उसने हिरन को आहिस्ता से जमीन पर रख दिया और खुद नीचे उतर आया और चाकू की एक ही वार से उसकी गर्दन अलग कर दी और उसे अपने कंधों पर डालकर अपने केबिन की तरफ चल दिया। केबिन में पहुंचकर टार्जन ने चाकू से हिरन के टुकड़े टुकड़े किए और एक रान के अलावा बाकी गोश्त केबिन की छत के साथ बंधे हुए छोटे छोटे रस्सों से लटका दिया ताकि किसी और वक्त काम आ जाए। इसके बाद उसने दो पत्थरों को रगड़कर घास फूस को आग लगा दी और हिरन की रान को आग के शोलों में भूनने लगा। कच्चा पक्का गोश्त बड़े मजे से हड़प करके टार्जन वहीं जलती हुई आग के करीब ही लेट गया और चंद लम्हों बाद झोपड़ी के कोनों खुदरों में छुपे हुए चूहे टार्जन के खर्राटे सुन रहे थे। उधर टार्जन अपने केबिन में खर्राटे ले रहा था और उधर कुछ दिनों बाद रोकोफ का जहाज कैपटाउन पहुंच गया। इस दौरान रोकोफ ने, जिसने अपना नाम क्यूरिन रख लिया था और आवाज भी बदल ली थी, मिस स्ट्रांग से मुलाकातें जारी रखी और फिर कैपटाउन पहुंचकर उसने बाकायदा उनके घर आना जाना शुरू कर दिया। ऐसा नजर आता था कि वो किसी खास मकसद से इन लोगों से मेलजोल बढ़ा रहा है। आखिर एक दिन पालविच ने पूछा,
वेल सर, आप मिस स्ट्रांग से आजकल बहुत मिलता है, समथिंग इज।
अरे मिस्टर पॉल, तुम इतनी सी बात नहीं समझते। मिस स्ट्रांग का बाप बहुत अमीर आदमी है।
यस यस।
और इस लड़की के सिवा इस दुनिया में उसकी दौलत का मालिक और कोई नहीं।
ओह आई सी, वेल अब हम समझा। बट लेकिन क्या तुम उससे मैरिज करेगा?
मुझसे शादी नहीं करेगी तो जाएगी कहाँ? मिस्टर पॉल,
यस,
मैंने ऐसा जाल डाला है कि अब उसे मजबूरन मुझसे शादी
करना ही पड़ेगा।
ओह वेल देन, वेल देन मिस्टर रोकोपेंड, बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू वेरी मच मिस्टर पॉलविच।
कई हफ्ते गुजर गए और इसी असना में टेनिंगटन का छोटा सा जहाज भी केप टाउन पहुंच गया और जैन जमीन पर कदम रखते ही सबसे पहले अपनी सहेली मिसेस स्ट्रॉन्ग के घर पहुंची। दोनों सहेलियां एक दूसरे से लिपट गईं।
ओह जैन, रियली तुमको देखकर मैं कितना खुश हुआ, बताने को नहीं सकता। कैसा है तुम जैन?
ठीक हूँ मिसेस स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी सुनाओ, तुम कैसी हो?
नहीं नहीं जैन, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लगता। हाँ हम तो बिल्कुल ठीक है, ओके है, ओके।
नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
नहीं नहीं तुम्हारा बात से लगता है तुमको कोई दुख है। बताओ जैन क्या हुआ है, क्या बात है?
मैं एक हफ्ता केप टाउन में ठहरने के बाद अपने वालिद के साथ हिंदुस्तान चली जाऊंगी और फिर मेरी शादी हो जाएगी।
डोंट यू वरी जैन, इसमें रोने का क्या बात है?
नॉलेज होता तो अच्छा बात है, ऐसे रोते नहीं है। ओके आंसू पोछो, पूछो शाबाश, आंसू पोछो।
दूर उस बात स्ट्रॉन्ग के वालिद के नाम एक तार आया जिसमें लिखा था कि वो फौरन पार्टी मोड़ पहुंचे। उसने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। वो अपनी बेटी मिस स्ट्रॉन्ग को भी साथ ले जाना चाहता था लेकिन उसने कहा कि वो अपनी सहेली जेन के साथ इंग्लिस्तान जाना चाहती है ताकि उसकी शादी में शरीक हो सके। उस वक्त वो कोफ भी वहाँ मौजूद था। टेनिंगटन ने कहा,
सर इफ यू वांट जॉइन अस।
ओह व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिस्टर टेनिंगटन, मैं जरूर आपके साथ इंग्लिस्तान चलूंगा। लेकिन एक गुजारिश थी आपसे।
यस यस।
मेरे साथ मेरा एक साथी भी है मिस्टर पॉलविच, उसे भी अगर।
ओह श्योर श्योर व्हाई नॉट।
ओह थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
एक खुशगवार और चमकीली सुख को उनका छोटा सा जहाज इंग्लिस्तान की जानेब रवाना हो गया। अफ्रीका के साहिल के साथ साथ सफर करते हुए पहले ही दिन का वाकया है कि स्ट्रॉन्ग ने अपने सामान में से तस्वीरों की एक एल्बम निकाली। ये तस्वीरें उसने केप टाउन आते हुए जहाज पर उतारी थी। यकायक एक तस्वीर को देखकर मिसेस स्ट्रॉन्ग का चेहरा उदास हो गया। उसने गम से भरराई हुई आवाज में कहा,
बेचारा जैन। जैन यस मिसेस स्ट्रॉन्ग। ओह जैन, मैं तुम्हारे को बता नहीं सकता है कि ये मैन कितना खुशमिंट है, कितना हैंडसम, बिल्कुल दिल का मापिक ताकत है और बच्चे का मापिक भुला भाला मासूम। बट यू नो ड्यूरिंग ट्रेवल वो मर गया, बेचारा समंदर में गिर गया। जैन ऐसे आदमी को भी मरना नहीं चाहिए था, नहीं मरना चाहिए था।
ये कहते हुए मिसेस स्ट्रॉन्ग की आंखों से आंसू जारी हो गए। जैन चूंकि कुछ फासले पर बैठी हुई थी इसलिए वो तस्वीर नहीं देख सकी। उसने अपनी सहेली को रोते देख कर कहा,
हाँ ऐसे हादसे दुनिया में होते ही रहते हैं, शरीफ लोग जल चले जाते हैं और बदमाशों की रस्सी दराज होती रहती है।
बट यू नो मेरे को याद पड़ता है कि उसने एक बार तुम्हारे बारे में भी हमसे बात किया था।
मेरे बारे में?
हाँ हाँ तुम्हारे बारे में। लुक ये फोटोग्राफ देखो, शायद तुम इसे पहचानेगा।
लो दिखाओ।
लो देखो पहचानो।
ओह डार्सन तुम तो क्या तुम मर गए डार्सन।
जैन जैन ओह नो।
तस्वीर देखते ही जैन बेहोश होकर फर्श पर गिर गई और एक दो दिन के अंदर ही अंदर जैन की हालत मुर्दों से बदतर हो गई। वो बरसों की बीमार नजर आने लगी। उसका फूल की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। वो हर वक्त अपने केबिन में बिस्तर पर पड़ी छत को घूरा करती। जैन की बीमारी के दो रोज बाद उस जहाज पर एक आफत आई। उसका एक इंजन चलते चलते अचानक खराब हो गया और जहाज अपने रास्ते से भटक कर न जाने कहां जा निकला। दो रोज तक इंजन की मरम्मत होती रही फिर वो चलने के काबिल हुआ। लेकिन इंजन ठीक होते ही समंदर में एक खौफनाक तूफान आया और बड़ी बड़ी लहरों ने जहाज को एक खिलौने की मानिंद इधर से उधर उछालना शुरू कर दिया। जहाज के अरसे पर जो सामान रखा था वो सब लहरों की नजर हो गया। उसके बाद दो मल्ला आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को हलाक कर दिया, फिर मारने वाला खुद ही समंदर में कूद गया। اگلے روز جہاز کا ایک اور تجربہ کار افسر غائب ہو گیا. تلاش کے باوجود اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا. ان حادثوں نے مسافروں کو ڈرا دیا تھا اور ہر شخص کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ آنے والی مصیبت کسی طرح ٹل جائے, مگر ان کی دعائیں بے سود ثابت ہوئیں, کیونکہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور جہاز پھرکی کی طرح ایک ہی جگہ گھومنے لگا. اسی وقت جہاز کے کپتان نے کہا,
لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہمارے کو بہت افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ جہاز آپ ٹریولنگ کے قابل نہیں ہے. اس کو بچانا آپ بیکار ہے اور اس کو ڈوبتے میں کم از کم 20 منٹ لگ جائے گا. اس لیے ہم کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کشتیوں پر سوار ہو جانا ہے جو جہاز کے ساتھ بندھا ہوا ہے. پلیز آپ لوگ اپنے ساتھ اونلی کھانے کا سامان لے لیں. اوکے.
ملاحوں اور عملے کے دوسرے لوگوں نے 4 کشتیاں پانی میں اتار دی اور مسافر ان میں اترنے لگے. جین اتنی کمزور تھی کہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتی تھی, اور ویسے بھی ٹارزن کی موت کے بعد اسے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی. اس نے سوچا شاید اسی بہانے اسے موت آ جائے, لیکن یکایک کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا. جین کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور پھر اسے کچھ خبر نہ رہی. جب جین کو ہوش آیا تو صبح کا اجالا مشرق کی جانب پھیل رہا تھا. سمندر کی لہریں پرسکون تھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے. جین کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ اس کے قریب ہی ولیم اور روکوف آندھے پڑے ہوئے تھے, اور کشتی کے آخری کونے پر 3 ملا بے سود یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے مر چکے ہوں. جین کا دل غم کی وجہ سے بیٹھنے لگا. وہ بے اختیار چیخیں مار مار کر رونے لگی. جین کی چیخیں سن کر ولیم اور روکوف جاگ پڑے. ولیم نے دیکھا کہ لمبے چوڑے سمندر میں صرف وہی 6 شخص ہیں جو کشتی پر سوار کسی نامعلوم منزل کی جانب چلے جا رہے ہیں. ولیم نے تعجب سے کہا,
مجھے خوب یاد ہے کہ 4 کشتیاں حفاظت سے سمندر میں اتار دی گئی تھی, لیکن اب صرف یہ کشتی ہے. باقی 3 کشتیاں کہاں ہیں؟
جناب آپ ان کی فکر نہ کیجیے, کشتیاں ادھر ادھر بکھر گئی ہیں. خدا نے چاہے تو بہت جلد وہ ہم سے آ ملیں گے, وہ ہم ان تک پہنچ جائیں گے. اور ویسے بھی جناب ان کشتیوں کا ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ہی اچھا ہے.
کیوں کیوں الگ ہو جانا کیوں اچھا ہے؟
اس لیے جناب کہ ہو سکتا ہے کہ سمندر میں جانے والا کوئی جہاز کسی کشتی کو دیکھ کر مدد کے لیے آ جائے.
ہاں تو پھر
اسی صورت میں باقی کشتیاں بھی بچ سکتی ہیں, مگر ایک ساتھ سفر کرنے میں یہ فائدہ نہیں ہوتا.
ہاں ہاں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو, باقی اس طرف تو میرا خیال ہی نہیں گیا تھا.
جی جی.
کیا نام ہے جناب؟
ٹومکن جناب.
ٹومکن, تو یہ سب بکواس بند کر اور یہ بتا کہ کشتی پر پانی اور خوراک کتنی ہے.
دیکھیں جناب والا, زبان سنبھال کر بات کیجیے. میں آپ کا غلام نہیں ہوں جو آپ پر حکم چلا رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیجیے کہ کیا ہے اور کیا نہیں.
سور کتے کمینے,
آپ نے لڑنے کا یہ بالکل غلط موقع تلاش کیا ہے. اس وقت ہم سب ایک مصیبت سے دو چار ہیں, پہلے اس سے نمٹنے کی کوئی تدبیر ہونی چاہیے. یہ لڑائی جھگڑا تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا.
مسٹر ولیم, آپ نہ روکتے تو میں اس بدماش کو ابھی مزہ چکھا دیتا. یہ کمینے لوگ لاتوں اور گھوسوں سے ہی درست رہ سکتے.
چلیے اب غصہ چھوڑیے, میں دیکھ لیتا ہوں پانی اور خوراک کتنی ہے. ہاں بھائی ذرا دیکھو تو ان کنسٹروں میں کیا کیا ہے.
یہ جناب ایک کنسٹر پانی کا ہے اور ایک کنسٹر میں خشک بسکٹ ہے. یہ لیجیے خود دیکھ لیجیے.
ہاں نہیں بس ٹھیک ہے, دونوں کنسٹر وہیں رکھے رہنے دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس پانی اور خوراک کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہمیں کب تک سمندر کے سینے پر تیرنا پڑے. اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے میں سے ایک کو اس کشتی کا کمانڈر مقرر کر لیں اور باقی سب اس کا حکم مانیں. اچھا ٹھیک ہے, جیسے آپ سب کی مرضی.
تینوں ملاحوں نے ایک زبان ہو کر کہا تو جین نے بھی سر ہلایا. یہ سن کر روکوف غصے سے ہونٹ کاٹتا رہا لیکن کچھ بولا نہیں. ولیم نے سب کی بات سن کر کہا,
تو دوستو طے یہ ہوا کہ روزانہ صبح و شام ہر شخص کو ایک چلو پانی پینے کے لیے اور 2 بسکٹ کھانے کو ملیں گے. مجھے امید ہے کوئی صاحب اس سے زیادہ کی خواہش نہیں کریں
گے.
اوکے اوکے اوکے, تعاون کا بہت بہت شکریہ.
ان سب کو پوری امید تھی کہ چند روز کے اندر اندر سمندر میں سفر کرنے والا کوئی جہاز انہیں بچا لے گا, मगर जब एक हफ्ता गुजर गया और कोई जहाज दिखाई न दिया तो उन्हें नाउमीदी ने घेर लिया। रुकोफ की वजह से उनका सुकून भी गारत हो चुका था। ये शख्स हर वक्त लड़ने मरने पर आमादा नजर आता। रुकोफ ने इस दौरान कई मर्तबा बिस्किट भी चुराए और अपने हिस्से से ज्यादा पानी भी पीता रहा। नतीजा ये निकला कि आठवें दिन उनके पास पीने के लिए पानी का एक घूंट भी न था और बिस्किट वो तो एक दिन पहले ही खत्म हो चुके थे। ये मांझे देखकर विलियम ने कहा,
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ना अब हमारे पास खाने के लिए कुछ है और न ही पीने के लिए पानी, इसलिए अब आप लोग बारिश के लिए दुआ मांगिए क्योंकि अब बारिश का पानी ही हमारी मदद कर सकता है।
जैन पर वशी तारी थी और यही हाल तीनों मल्लाहों का था। उनकी दाढ़ियां और मूछें बेतहाशा बढ़ चुकी थी और कपड़े फट गए थे। सफर के 15वें दिन दोपहर के वक्त यकायक कश्ती के अंदर एक चीख सुनाई दी और फिर रोने की आवाज आई। वजह मालूम की तो मालूम हुआ विल्सन नामी मल्लाह के भाई ने दम तोड़ दिया। सब लोगों ने बड़ी कोशिशों के बाद उसकी लाश को समंदर में फेंका। विल्सन अब पागल सा हो गया था। कभी वो हंसता, कभी रोता और कभी गीत गाने लगता। भाई की मौत ने उसकी यह हालत कर दी थी। आखिर एक रोज वो भी अपनी जगह से उठा और एकदम से अपने आप को समंदर में गिरा दिया। बिखरी हुई मौजें आनन फानन से निकल गईं। अब कश्ती के 6 मुसाफिरों में से 2 हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो चुके थे कि अचानक 18वें रोज तीसरा मल्लाह भी मरा हुआ पाया गया। अब इन लोगों में इतनी भी सख्त बाकी न थी कि उस मल्लाह की लाश को उठाकर समंदर में फेंक दी। फिर भी विलियम हिम्मत करके लाश उठाने की कोशिशें करने लगा। ये देखकर जैन ने भी हिम्मत की और आगे सरक कर विलियम का हाथ बटाने लगी। उन्हें हांफते हुए बड़ी मुश्किल से मल्लाह की लाश को उठाकर समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी कि अचानक विलियम ने कश्ती में किसी के हरकत करने की आवाज सुनी। यह आवाज उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ रुकोफ लेटा था। विलियम के रोंगटे खड़े होने लगी। आवाज लम्हा ब लम्हा साफ होती चली गई। विलियम ने चीखना चाहा मगर आवाज हलक से न निकली। आहट और करीब आने लगी और फिर विलियम ने अपनी टांगों पर किसी का बोझ महसूस किया। इस मरतबा विलियम के हलक से एक घुटी घुटी सी चीख निकल ही गई और विलियम बेहोश हो गया। मशरक की जानिब से जब सुख की रोशनी फैलने लगी तो विलियम होश में आया। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा मगर कुछ नजर न आया। फिर उसने आंखें बंद कर दी और एक सुहाना ख्वाब देखने लगा। बारिश, मूसलाधार बारिश। पानी ने उसका जिस्म तर कर दिया और फिर उसने मुंह खोल दिया और खुश्क जबान को तर किया। अब विलियम के बदन में जान पड़ने लगी।
ठंडा ठंडा पानी, लेकिन ये तो ख्वाब है। नहीं नहीं, ख्वाब नहीं है, ये तो हकीकत है।
और फिर एक झटके के साथ उसने आंखें खोल दी। खुशी से विलियम का दिल झूम उठा। आसमान पर काली काली घटाएं छाई हुई थी और बारिश हो रही थी। विलियम ने उठना चाहा लेकिन उसके पैरों पर कुछ बोझ सा था। अब उसने गौर से देखा, ये थियोरेन यानी रुकोफ था। वो आंधे मुंह बेहोश पड़ा हुआ था और उसके दाएं हाथ में चाकू था। विलियम ने कोशिश करके अपनी टांगें आजाद कराई। फिर उसने रुकोफ के हाथ से चाकू लेकर अपने कोट की जेब में रखा और जेन की तरफ बढ़ा और लरसते हाथों से जेन की गर्दन ऊपर उठाई। अभी वो जिंदा थी मगर मुर्दों से बदतर। विलियम ने बारिश का पानी उसके खुश्क होंठों पर मला। थोड़ी देर बाद जेन ने बेहोशी के आलम में कहना शुरू किया,
जैन,
जैन,
ये पानी है।
हाँ जैन, हाँ पानी है। आखिर खोलो जैन, देखो देखो ये बारिश हो रही है।
क्या क्या बारिश हो रही है?
बारिश हो रही है
विलियम, बारिश। थैंक्स गॉड। विलियम, ये कौन है? मिस्टर थ्योरेन।
हाँ, ये मिस्टर थ्योरेन है।
तो क्या क्या तुमने इसे मार डाला?
नहीं जिन, जिंदा है।
लेकिन
घबराओ नहीं जी, ये बेहोश है।
बेहोश है?
हाँ, इसने आधी रात को मुझ पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी।
तुम पर?
हाँ, मुझ पर, मगर शायद कमजोरी की वजह से कामयाब नहीं हो सका, पर मेरे कदमों पर गिर गया। ये देखो, ये रहा वो चाकू जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था।
ओह माय गॉड।
और अगर मैं चाहूं जेन, तो इस बदमाश को अभी और इसी वक्त कत्ल कर
सकता। नहीं नहीं, नहीं। तुम ऐसा ना करो, इसे तुम आप अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दो।
अच्छा ठीक है, मैं इसे जरा सीधा तो कर दूं।
नहीं, नहीं, नहीं। इसे यू ही पड़ा रहने दो, वरना पानी पीकर इसके बदन में जान आ जाएगी और फिर वो तुमसे जरूर लड़ाई करेगा।
लेकिन जीन, देखना तो चाहिए, हो सकता है मरी के अब।
नहीं नहीं दीदी, इसे यू ही पड़ा रहने दो, मुझे डर लगता है।
अच्छा अच्छा जैन, जैसे तुम्हारी मर्जी।
ये कहकर विलियम आगे बढ़ा ही था कि उसकी निगाहें कुछ फासले पर समंदर में एक लंबी सी सुरमई रंग की लकीर पर पड़ी। उनकी कश्ती तेजी से उसी लकीर की जानिब बढ़ रही थी और फिर ये लकीर आहिस्ता आहिस्ता साफ होती चली गई। विलियम खुशी से चिल्लाया,
जमीन जैन, जमीन! खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जमीन दिखाई दी।
जमीन! लॉट ऑफ थैंक्स गॉड,
थैंक्स गॉड,
लॉट ऑफ थैंक्स। विलियम, अब तुम चाहो तो मिस्टर थ्योरिन को होशियार कर सकते हो।
इतना कहकर जेन ने उठकर देखा, दूर बहुत दूर अफ्रीका का कोई घना और तारीख जंगल नजर आ रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख साफ दिखाई देने लगे। जंगल की दुनिया में दोबारा लौट आने के बाद टार्जन सब कुछ भूल चुका था, लेकिन उसे एक बात का दुख जरूर था और वो ये कि उस बदमाश रुकोफ को कोई सजा न दे सका। एक तो मरतबा उसे मिसेस स्ट्रांग का भी ख्याल आया कि खुदा जाने उस मासूम लड़की पर क्या बीती होगी। फिर टार्जन को बोंगा गांव का ख्याल आया। इस गांव में जंगली लोगों की एक छोटी सी बस्ती थी और यहाँ उसके कई पुराने दोस्त रहते थे। उसने दिल में सोचा, खुदा मालूम उसकी गैर हाजिरी में उन बेचारों पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए और अभी तक बोंगा कबीले का कोई आदमी ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलामों की तिजारत करने वालों ने फिर उन पर हमला किया हो और बहुत से लोगों को वो गुलाम बनाकर ले गए। जरूर यही बात होगी। टार्जन के दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। उसने केबिन में से खंजर और रस्सा निकालकर कंधे पर डाला और बोंगा गांव की जानेब रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद टार्जन ने एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर नीचे झांका तो बोंगा गांव उसके कदमों तले था। मगर किस हाल में, झोपड़ियां जली हुई, सामान इधर उधर फैला हुआ और कहीं कहीं औरतों बच्चों और आदमियों की लाशें भी पड़ी हुई थी। टार्जन की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए नहीं कि वो इन लाशों को देखकर डर गया था, बल्कि इसलिए कि वो ऐसा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी नजर में काली चमड़ी वाले भी इंसान हैं, तो फिर सफेद लोग उन्हें दुख क्यों पहुंचाते हैं, क्यों हकीर समझते हैं? क्या दुनिया में काले रंग के इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है? टार्जन अभी यह सोच ही रहा था कि एक बू ने उसे चौकन्ना कर दिया। ये बू किसी इंसान के जिस्म की थी। टार्जन चीते की मानिंद फुर्ती से एक दरख्त पर चढ़ गया और अपने आप को पत्तों में छुपा लिया और चंद मिनट के बाद उसने देखा एक लंबा तड़ंगा आदमी जिसने सिर्फ बड़े बड़े पत्तों से बुनी हुई लंगोटी पहनी हुई थी, वो गले और हाथ पांव में जर्द रंग के कड़े और हाथ में लंबा सा नेजा लिए चला रहा था। किसी वैश्य कबीले का आदमी लगता था। वो उसी दरख्त के करीब से गुजरकर जिस पर टार्जन बैठा था जरा दूर जा चुका तो अचानक टार्जन की नाक में एक और बू आई और ये बू ऐसी न थी जिसे टार्जन जैसा आदमी पहचानने में देर लगा था। टार्जन ने गर्दन घुमाकर लंबी घास पर नजरें गाड़ दी। एक ताकतवर शेर घास में चुपके चुपके हरकत कर रहा था। उसका जबड़ा खुला हुआ था और वो बिल्कुल बिल्ली की मानिंद दबे पांव आगे बढ़ रहा था। उसी जंगली आदमी को पकड़ने की फिक्र में वो आगे बढ़ता चला आ रहा था। टार्जन ने जंगली आदमी को बचा।
उस शेर के हमले से महफूज न था कि अचानक हबशी का नेजा सनसनाता हुआ आया और शेर के दाएं शाने में घुस गया। शेर उलट कर गिरा और जमीन पर लौटने लगा। हबशी शेर को बेहोश पकड़ आगे बढ़ा और शेर के शाने में घुसा नेजा निकाल लिया। जख्मी शेर की दहाड़ और गरज सुनकर इर्द गिर्द से बेशुमार लोग, जिनमें औरतें, बच्चे और लंबे तड़ंगे मर्द भी थे, चींटियों की तरह नमूदार होने लगे। वो लोग हैरत और खौफ की नजरों से सफेद चमड़ी वाले शख्स को देख रहे थे, जिसने जंगल के बादशाह की गर्दन में फंदा डालकर उसे बेबस कर दिया था। और थोड़ी देर के बाद इन लोगों को सारी बात मालूम हो गई, तो वो लोग खुशी से नाचने, कूदने और उछलने लगे। और देखते ही देखते उन्होंने शेर को अपने नेजों और कुल्हाड़ियों की मदद से हलाक कर डाला और टारजन को अपने घेरे में लेकर अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो गए। टारजन ने जिस शख्स की जान बचाई थी वो बुसोली कबीले का सरदार था और उसका नाम बुसोली था। बुसोली ने टारजन को बताया,
दोस्त, अभी कुछ दिन पहले ही गुलामों की तिजारत करने वाले सफेद आदमियों और उनके हबशी गुलामों ने गूंगा कबीले पर हमला किया था।
ओहो, अच्छा अच्छा, तभी मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया।
जी बिल्कुल, वो लोग उनके बहुत से आदमियों और औरतों को गुलाम बनाकर ले गए।
ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ।
और यही नहीं, उन्होंने उनका सोना और हाथी दांत भी छीन लिए। उन बुजदिलों ने एक रोज बुसोली कबीले पर भी हमला किया था, लेकिन हम लोगों ने डट कर मुकाबला किया और उनके कई आदमी मार डाले।
बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फिर क्या हुआ?
फिर वो लोग बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के भाग गए, मगर जाते जाते उन लोगों ने कसम खाई थी कि वो बहुत जल्द दोबारा आएंगे और इस कबीले को तहस नहस कर डालेंगे।
तो फिर आए वो लोग दोबारा?
नहीं, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन मुझे यकीन है कि बस दो एक दिन में वो हमला जरूर करेंगे।
तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूँगा।
ये सुनते ही सब लोग खुशी से उछलने, कूदने और नाचने लगे। रात को उन्होंने टारजन की दावत का इंतजाम किया और इस दावत के दौरान टारजन को मालूम हुआ कि इन लोगों ने टारजन को अपना सरदार चुन लिया है। इस पर टारजन ने बुसोली से कहा,
भाई ये सरदारी का ओहदा तुम्हीं को ही मुबारक हो, मैं सरदार बनना नहीं चाहता।
नहीं नहीं जनाब, आपको सरदार बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर आदमी हैं और आप ही हमें हमलावरों से महफूज रख सकेंगे।
लेकिन एक बात याद रखना और अपने तमाम साथियों से भी कह देना।
हाँ हाँ जनाब, बोलो क्या बात है।
मैं उसी वक्त तक तुम लोगों का सरदार हूँ जब तक तुम मेरा हुक्म मानोगे। अगर तुमने कभी मेरे हुक्म के खिलाफ काम किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा।
मैं तमाम कबीले की तरफ से वादा करता हूँ कि हम सब लोग तुम्हारी हर बात मानेंगे।
और ये भी वादा करो कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे।
हम वादा करते हैं कि कोई बात नहीं छुपाएंगे।
मैं जो कुछ पूछूंगा तुम सच सच बतलाओगे?
हाँ, हम वादा करते हैं कि हमें जो कुछ भी मालूम होगा सच सच बतलाएंगे।
अच्छा, तो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो तुम्हारी औरतों के पास जेवर हैं और इनमें ये जो पीले रंग की धात है, ये कहाँ से आई जिसे लोग सोना कहते हैं?
बस इतनी सी बात थी जो आप हमसे पूछना चाहते थे।
हाँ।
क्या आपको इस धात की जरूरत है?
नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी तुम बताओ कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई?
ये एक लंबी और दिलचस्प दास्तान है,
मैं जरूर सुनना चाहूंगा।
यहाँ से दूर, बहुत दूर, उस मकाम पर जहाँ से सूरज निकलता है, पहाड़ों और घने जंगलों के पीछे एक बस्ती है। ये उन दिनों की बात है जब मेरे बाप का बाप जवान था और उसे नित नए कारनामे करने का बड़ा शौक था। अपने इसी शौक की खातिर वो दूर दराज इलाकों में निकल जाता। इसी तरह एक बार वो अपने चंद साथियों को लेकर जुनूब मशरिक की जानिब चल पड़ा। सुन रहे हैं आप?
हाँ हाँ, मैं तुम्हारी कहानी बड़े शौक से सुन रहा हूँ।
हाँ हाँ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो जनाब, मेरे बाप का बाप पहाड़ों के उस पार पहुँचा जहाँ एक बहुत ही तारीक और घना जंगल था। वहाँ उसने एक अजीब किस्म की मखलूक को चलते फिरते देखा।
अच्छा,
उस मखलूक के भी हमारी तरह दो हाथ, दो पांव, दो आंखें और दो कान थे, लेकिन न वो हमारी तरह बिल्कुल काले थे और न आपकी तरह गोरे चिट्टे।
अच्छा,
बस उनका रंग दरमियाना था, मगर उनके जिस्मों पर रीछ की तरह लंबे और घने बाल थे। जब वो हुर्रा कर एक दूसरे को पुकारते तो यूं लगता जैसे जैसे बनमानस लड़ रहे हैं।
कहीं तुम्हारे बाप का बाप ख्वाब तो नहीं देख रहा था भूसुली?
नहीं नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं।
भाई मेरी तो सारी जिंदगी इन्हीं जंगलों में गुजरी है, मैंने तो आज तक उस मखलूक को नहीं देखा।
हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते सरदार।
ओहो तुम तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था भूसुली। अच्छा फिर आगे कहो, आगे आगे क्या हुआ?
फिर मेरे बाप के बाप ने देखा कि वो लोग जर्द रंग की उसी धात के जेवर पहने हुए थे और उन्होंने अपने हथियार भी उसी से सजा रखे थे।
उस बस्ती का नाम क्या था ये मालूम नहीं हुआ?
हाँ मेरे बाप के बाप ने उस बस्ती का नाम लिया था।
हाँ क्या नाम था उस बस्ती का?
उस बस्ती का नाम था ओपार। हाँ और उस बस्ती के एक पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा गार है और जर्द रंग की ये धात उसी गार में जमा थी। फिर मेरे बाप का बाप अपनी बस्ती में लौट आया और यहाँ के सब जवानों को अपने साथ लेकर ओपार वालों से जंग की। दोनों तरफ के आदमी मारे गए लेकिन जीत मेरे बाप के बाप की हुई।
बहुत खूब।
और यूं ये धात हमारे हाथ आई। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
आओ। बुसोली टार्जन को बस्ती से कोई 2-3 मील दूर ले गया। वहाँ एक छोटा सा दरिया बह रहा था जिसके दोनों किनारों पर एक बहुत बड़े दरख्त का तना आर पार डालकर पुल बनाया गया था। उन्होंने उस पुल के जरिए दरिया पार किया और फिर बुसोली ने एक जगह रुककर चंद झाड़ियां हटाई। टार्जन ने देखा कि जमीन के अंदर एक सुरंग सी खुदी हुई है और इसके देखते ही देखते बुसोली उस सुरंग में गायब हो गया। चंद लम्हे बाद टार्जन को बुसोली की दूर से आवाज सुनाई दी।
सरदार सुरंग में आ जाइए, मैंने मशाल जला ली है।
टार्जन ने फौरन सुरंग में छलांग लगा दी। उसके पांव नरम और गीली जमीन में गड़ गए। यहाँ खासा अंधेरा था और सड़ी हुई घास की बदबू हर तरफ फैली हुई थी। फिर उसने बुसोली को मशाल लिए देख लिया। ये बहुत गहरी और लंबी सुरंग थी। देर तक चलने के बाद एक जगह बुसोली रुका और उसने मशाल सर से ऊंची की। टार्जन ने अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाया जहाँ बेशुमार इंसानी खोपड़ियाँ और पिंजरे पड़े हुए थे।
सरदार ये हमारे बाप, उनके बाप और फिर उनके बापों की हड्डियाँ हैं। और हमने जर्द धात का सारा जखीरा इन्हीं की हिफाजत में रखा है ताकि इसे कोई दुश्मन चुरा ना सके।
अच्छा अच्छा।
और ये पहला मौका है कि गैर शख्स जो हम में से नहीं है लेकिन अब हमारा सरदार है इस खजाने को देख रहा है।
इतना कहते ही बुसोली ने मिशल टार्जन के हाथ में दे दी और ढांचों को एक तरफ हटा दिया। टार्जन का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इन ढांचों के पीछे सोने के डलों के अंबार लगे हुए थे और जो ही मिशल की रोशनी इस अंबार पर पड़ी पूरा हार रोशनी से जगमग जगमग करने लगा।
ओह माय गॉड।
सरदार आप इसमें से जितनी धात लेना चाहें ले सकते हैं, ये सब आपकी है।
नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये चीज तुम्हारी है और तुम्हें इसके मालिक हो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आओ आओ अब यहाँ से वापस चले।
अभी टार्जन और बुसोली सुरंग से बाहर निकले ही थे कि एक आदमी नेजा हाथ में लिए दौड़ता हुआ आया और खुली हुई सांस कहने लगा,
जल्दी कीजिए सरदार, गुलामों की तिजारत करने वालों ने बस्ती पर हमला कर दिया है।
बुसोली कबीले के गांव पर गुलामों की तिजारत करने वालों का यह हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि इन बेचारों को संभलने का मौका ही न मिला। हमलावरों के पास राइफलें और बंदूकें थी। उन्होंने शाम होने से पहले पहले 50 मर्दों और औरतों को कैद कर लिया और इससे दुगने लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। कबीले के बाकी लोग घने जंगल के अंदर भाग गए। बुसोली और टार्जन भी साथ ही थे। हमलावरों ने जिस संगदिली से बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया था उसे देखकर टार्जन के तन बदन में आग सी लग गई। वो भूखे चीते की मानिंद उन पर टूट पड़ने के लिए बेचैन था, मगर मुसीबत ये थी कि यहाँ नेजे और तीर कमाने थी और वहाँ बंदूकें और राइफलें। टार्जन को बुसोली ने बताया,
सरदार यहाँ ये लोग इसलिए हमला करते हैं कि एक तो हाथी दांत के तमाम जखीरे लूट कर ले जाएं और दूसरे यहाँ के मर्दों और औरतों को गुलाम बना लें।
ये लोग औरतों और मर्दों से क्या काम लेते हैं?
ये जालिम بھیڑ بکریوں کی طرح ان لوگوں کو دوسرے ملک لے جا کر فروخت کر دیتے ہیں. برسوں سے یہ لوگ اسی طرح ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں. ان ظالموں نے ساحل کے ساتھ ساتھ بے شمار بستیاں اجاڑ ڈالی ہیں.
پھر تو ان ظالموں کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا.
رات کی تاریکی میں وصولی قبیلے کے بچے کچھے لوگوں نے چربی کی مشعلیں روشن کی اور دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کی تدبیروں پر غور کرنے لگے. آخر بہت دیر بحث کرنے کے بعد ٹارسن نے کہا,
میں نے تمام تجویزیں سنی اور ان پر غور کیا, مگر ان میں سے کوئی بھی تجویز بے نزدیک اچھی نہیں ہے, اور اگر تم اس پر عمل کرو گے تو دشمن تمہیں چن چن کر مار ڈالے گا. اس لیے اب تم سب لوگ میری بات غور سے سنو, اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے میرے کہنے پر عمل کیا تو ہم بہت جلد نہ صرف دشمن کو چوہے کی طرح گھیر لیں گے بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر کا راستہ ہی بھول جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب جب تک تم لوگ میرا کہنا مانو گے میں دل و جان سے تمہارے ساتھ ہوں, لیکن نافرمانی کی صورت میں میں تم لوگوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا, اور پھر تم لوگ کبھی میری شکل نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب تھوڑی دیر بعد آدھی رات ہونے والی ہے, تم لوگ چپکے چپکے اپنی بستی کی طرف چلو گے. ہر شخص کے پاس نیزہ اور تیر کمان ہوگی. بستی کے قریب پہنچ کر تم میں سے ہر شخص میرے اشارے پر کسی نہ کسی درخت کے پیچھے چھپ جائے گا, اور اس وقت تک اپنے ہتھیار نہ چلائے گا جب تک میں الو کی بولی نہ بولوں. کیا تم لوگ میری بات یاد رکھو گے؟ ٹھیک ہے.
آدھی رات کے وقت کوئی 150 جوانوں کا ایک گروہ نیزے اور تیر کمانے سنبھالے ہوئے ٹارزن کے پیچھے پیچھے بستی کی جانب روانہ ہوا. یہ سب گھپ اندھیرے میں بھی یوں چلے جا رہے تھے جیسے دن کی روشنی ان کے گرد پھیلی ہوئی ہو. نہ کوئی شخص گرا اور نہ کسی نے ٹھوکر کھائی. ٹارزن سب سے آگے درختوں کی شاخوں اور ٹہنیوں پر بندر کی طرح اچھلتا اور چھلانگیں لگاتا ہوا جا رہا تھا. قبیلے کے وہ نوجوان جو اپنے آپ کو نہایت پھرتیلا طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے وہ بھی ٹارزن کی غیر معمولی رفتار اور پھرتی دیکھ کر حیران تھے اور سوچ رہے تھے کہ انہوں نے سفید چمڑی والے کو اپنا سردار چن کر کوئی غلطی نہیں کی. بستی کے اندر ہیبتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی. کہیں کہیں چربی سے جلنے والی مشعلوں کی روشنیاں جھلملا رہی تھی. ٹارزن نے اپنے ساتھیوں میں سے 10 آدمیوں کو ایک دائرے کی شکل میں پھیلا کر مختلف درختوں کے پیچھے چھپ جانے کا اشارہ کیا اور کہا کہ جب تک انہیں الو کی آواز سنائی نہ دے تیر یا نیزے ہرگز نہ پھینکیں. اب جس جگہ ٹارزن تھا یہاں سے حملہ آوروں کے پہرے دار صاف نظر آ رہے تھے, جن کی تعداد 5 تھی, اور ان 5 کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں. ٹارزن ہاتھ پیروں کے بل لمبی گھاس میں چلتا ہوا جب کچھ اور نزدیک پہنچا تو اسے پتا چل گیا کہ حملہ آوروں میں سے زیادہ تر لوگ مزے سے سو رہے ہیں اور یہ 5 پہرے دار ہی جاگ رہے ہیں. بستی کے آخری سرے پر بنی ہوئی سردار کی بڑی جھونپڑی میں سے عورتوں کے رونے کی متھم متھم آوازیں بھی ٹارزن کے کانوں تک پہنچی. اس نے دل میں کہا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں نے اپنے قیدیوں کو اس جھونپڑی میں بند کر رکھا ہے. وہاں بھی ایک پہرے دار کھڑا اونگ رہا تھا. ٹارزن دبے پاؤں گھوم کر اسی جھونپڑی کے نزدیک جا پہنچا اور قریب ہی ایک درخت پر چڑھ گیا. ایک لمحے کے لیے پہرے دار نے مڑ کر دیکھا, پھر غافل ہو کر اونگنے لگا. اب ٹارزن شاخوں اور ٹہنیوں پر سے ہوتا ہوا پہرے دار کے عین سر پر آ گیا, اور اس سے پہلے کہ پہرے دار حرکت کر سکے ٹارزن درخت پر سے کودا اور اس کی فولادی انگلیاں پہرے دار کے گلے پر اس طرح کڑ گئیں کہ اس کے حلق سے آواز تک نہ نکلی. اب ٹارزن نے اس کو گھسیٹ کر ایک گڑے میں ڈال دیا اور اس کی رائفل اور کارتوسوں کی پیٹی خود سنبھال لی. پھر اس نے چپکے سے جھونپڑی کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا. چند لمحے بعد ایک ایک کر کے تمام قیدی مرد اور عورتیں باہر نکلے اور جنگل کی تاریکی میں گم ہو گئے. اس کام سے فارغ ہو کر ٹارزن نے اپنا نیزہ سنبھالا اور درخت پر چڑھ گیا۔ ایک دو منٹ تک حالات کا جائزہ لینے کے بعد ٹارزن نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر الو کی بولی بولی۔ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے نوجوانوں نے ٹارزن کی یہ آواز سنی تو انہوں نے تیر کمانوں میں جوڑے اور کمر کے بل جھک کر آگے بڑھے۔ اب چاروں پہرے دار ان کے تیروں کی زد میں تھے۔ یکایک چار تیر سنسناتے ہوئے کمانوں سے چھوٹے اور چاروں پہرے داروں کے جسموں میں گڑ گئے۔ کسی کے منہ سے ذرا سی بھی آواز نہ نکلی۔ آنن فانن ان کی رائفلوں پر قبضہ کر لیا گیا اور چاروں لاشیں گھاس اور جھاڑیوں میں چھپا دی گئی۔ اب ٹارزن کے ساتھی جوش انتقام سے دیوانے ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ ایک دم سے سوئے ہوئے حملہ آوروں کو گھیر لیں، لیکن ٹارزن نے انہیں روکا اور سمجھایا۔
نا ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، کیونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان سب کے پاس رائفلیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم پہلے حملے میں دشمن کے 5-10 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے، لیکن جو ہی وہ ہوشیار ہوئے اور رائفلوں سے فائرنگ شروع کر دی تو پھر ہمارے لیے چھپنے کی جگہ نہ ہوگی اور ہم سب بری طرح مارے جائیں گے۔
ہاں سردار، یہ بات تم بالکل ٹھیک بولتے ہو، تو اب کیا کریں؟
اب اس وقت یہاں سے واپس چلتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد صبح ہونے والی ہے اور سویا ہوا دشمن جب جاگے گا اور اسے پتا چلے گا کہ رات کو اس کے 5 آدمی مار ڈالے گئے ہیں اور تمام قیدی فرار ہو چکے ہیں، تو ان پر ہماری ہیبت بیٹھ جائے گی اور وہ جلد سے جلد ہاتھی دانت اپنے نوکروں کے سروں پر رکھ کر ساحل کی جانب جانے کے لیے بے چین ہوگا۔ مگر ہم ساحل تک ان کا پیچھا کریں گے اور اپنے نیزوں اور تیر کمانوں سے انہیں مارتے چلے جائیں گے۔
بہت اچھی ترکیب سوچی ہے سردار،
لیکن اس کام میں بڑی احتیاط اور ہوشیاری کی ضرورت ہے۔
بالکل سردار بالکل، ہم ہوشیاری سے ہر کام کریں گے۔
آؤ اب یہاں سے چلیں اور صبح ہونے سے پہلے پہلے راستے کے ارد گرد درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ جائیں۔
ٹھیک ہے سردار، چلیے آؤ۔
اور ٹارزن کی یہ تدبیر درست ثابت ہوئی، کیونکہ دشمن کو صبح ہونے سے پہلے ہی پتا چل گیا کہ بسولی قبیلے کے لوگ رات کو ان کے 5 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار گئے ہیں اور انہوں نے تمام قیدیوں کو بھی آزاد کرا لیا ہے۔ حملہ آوروں کے سردار نے حکم دیا کہ ہاتھی دانت کا تمام ذخیرہ فوراً نوکروں کی پیٹھ پر باندھ دیا جائے۔ چنانچہ پہرے داروں کی حفاظت میں یہ قافلہ ساحل کی جانب روانہ ہو گیا جہاں ان کے جہاز کھڑے تھے، لیکن موت کے فرشتے ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ ٹارزن اور اس کے ساتھی میلوں تک راستے کے دونوں جانب گھنے درختوں، جھاڑیوں اور اونچی اونچی گھاس میں دبکے ہوئے دشمن کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اور قافلہ جب ان درختوں کے قریب آیا تو ٹارزن کی کمان سے تیر نکلا اور سب سے آگے جانے والا ایک سپاہی اوندے منہ زمین پر گر پڑا اور اس کے گرتے ہی ارد گرد کے درختوں اور جھاڑیوں سے تیروں اور نیزوں کی بارش ہونے لگی۔ حملہ آوروں کے بہت سے آدمی مارے گئے اور قافلے میں افراتفری مچ گئی۔ سفید فام آقاؤں نے جواب میں اپنی رائفلوں اور بندوقوں سے اندھا دھن فائرنگ کی، لیکن ان کی گولیاں درختوں کے تنوں اور شاخوں میں لگتی رہی۔ بسولی قبیلے کے لوگ حملہ کرنے کے فوراً بعد ہی اپنے سردار ٹارزن کے ساتھ جنگل میں دور دور تک پھیل چکے تھے۔ انہوں نے سارے دن میں 3 مرتبہ قافلے پر حملہ کیا اور ہر حملے میں دشمن کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ آوروں کے غلاموں میں اپنے آقاؤں کے خلاف نفرت اور بغاوت کے آثار دکھائی دینے لگے اور ٹارزن اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ شام کے وقت دشمنوں کا قافلہ ایک جگہ سستانے کے لیے رک گیا۔ اب ٹارزن ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا اور پھر ٹارزن کی گرجدار آواز جنگل میں گونجی۔ وہ حملہ آوروں کے غلاموں سے کہہ رہا تھا،
اے سفید چمڑی والوں کے کالے غلاموں، کیا تم اب بھی اپنے آقاؤں سے پیچھا چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ان سفید چمڑی والوں نے تمہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے اور تمہارے ذریعے دوسروں کو بھی غلام بناتے ہیں اور انہیں لوٹتے ہیں۔ یہ ہاتھی دانت جو تم نے بوسیلی قبیلے سے چھینے ہیں تم کبھی بھی ساحل تک نہیں لے جا سکو گے، بلکہ اسی جنگل میں تم سب موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ لیکن ہاں، ایک شرط پر تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی اور وہ شرط یہ ہے کہ تم ہاتھی دانت یہیں چھوڑ دو اور اپنے سفید آقاؤں پر ٹوٹ پڑو۔ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
ٹارزن کی آواز سنتے ہی قافلے میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ سفید آقاؤں نے جن کی تعداد اب صرف 30 رہ گئی تھی گھبرا کر اپنے 150 کالے غلاموں کی جانب دیکھا اور بندوقیں ان کی طرف تان لی. لیکن اب کالے غلاموں کی آنکھیں کھل چکی تھی. وہ اپنے ساتھیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ سب کے سب چیخیں مارتے ہوئے اٹھے اور اپنے آقاؤں پر پل پڑے. جنگ لمحوں کی جنگ کے بعد لڑائی بند ہو گئی کیونکہ سفید آقاؤں میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچ سکا تھا. اب کالے غلاموں میں سے ایک نے اونچی آواز میں کہا,
ہم نے ان سفید چمڑی والوں کو مار ڈالا ہے اور ہاتھی دانت بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. اب وہ شخص ہمارے سامنے آ جائے جس نے تھوڑی دیر پہلے ہم سے باتیں کی تھی.
اچانک ایک درخت سے دھم سے کوئی چیز نیچے گری اور کالے غلاموں کے سامنے آ گئی. یہ سفید چمڑی کا ایک لمبا تڑنگا اور خوبصورت آدمی ٹارزن تھا. کالے غلام ٹارزن کو دیکھتے ہی ترسان ہو کر بیٹھ گئے اور گڑگڑانے لگے. ان کا خیال تھا کہ یہ شخص کوئی دیوتا ہے. اب ٹارزن کے اشارے پر اس کے آدمیوں نے ان غلاموں کو اپنے گھیرے میں لے لیا. سب سے پہلے رائفلوں اور بندوقوں پر قبضہ کیا اور پھر ہاتھی دانت کا ذخیرہ سنبھال کر یہ گروہ ٹارزن کے آدمیوں کے پہرے میں ساحل کی جانب روانہ ہو گیا. لیکن ٹارزن ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا.
تو پھر سردار تم کہاں جاؤ گے؟
میں اب اپنے کیبن میں جا کر آرام کروں گا. تم فکر مت کرو, ایک دو دن آرام کرنے کے بعد میں تمہارے قبیلے میں ضرور آؤں گا.
اتنا کہہ کر ٹارزن اپنے کیبن کی طرف چل دیا. اور ادھر دوسری طرف جب ولیم اور روکوف کی کشتی کنارے پر پہنچ کر ریت میں دھنس گئی تو ان کی جان میں جان آئی. اب بارش بھی تھم چکی تھی اور بادل چھٹ جانے کے بعد سہپہر کا سورج آسمان پر چمک رہا تھا. وہ تینوں ٹھنڈی ٹھنڈی نرم ریت پر دیر تک بے سٹ پڑے رہے. آخر تھوڑی دیر بعد ولیم اٹھا اور اس نے کشتی کو گھسیٹ کر ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا. روکوف بھی اس وقت تک پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا. اس نے چین سے کہا,
مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم زندہ بچ گئے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ہیں کہاں اور یہاں سے وطن کیسے جائیں گے؟
جس خدا نے ہمیں مصیبت سے نکال کر یہاں تک پہنچایا ہے وہی ہمیں وطن بھی پہنچا دے گا. گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟
تم ٹھیک کہتی ہو جین, میرا دل گواہی دیتا ہے کہ مصیبت کے دن اب گزر گئے. خدا کرے تمہارے والد اور مس اسٹرانگ بھی صحیح سلامت ہوں.
ہاں ولیم, خدا کرے وہ سب بھی صحیح سلامت ہوں.
صبر کرو جین, مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ہماری طرح ضرور زندہ بچ گئے ہوں گے.
چند روز کے اندر اندر ان کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آ گئی. پھر روکوف اور ولیم نے ایک اونچے سے درخت کے اوپر چھوٹا سا مچان بنا لیا. اس مچان پر وہ رات کے وقت درندوں سے محفوظ رہ سکتے تھے. شروع شروع میں وہ جنگلی پھل اور نرم نرم پودے کھا کر پیٹ بھرتے رہے. پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے جانوروں اور مچھلیوں کو پکڑنا شروع کر دیا. ایک مہینہ گزر گیا. اب وہ جنگل سے کسی قدر مانوس ہو گئے تھے, لیکن جنگل میں زیادہ دور جانے کی ان میں ہمت نہ تھی. روکوف کچھ دن شریف بنا رہا, مگر پھر اس نے ولیم اور جین پر روب ڈالنا شروع کر دیا تھا. ولیم اور روکوف کی کئی بار توتو میں ہو چکی تھی. ان کے درمیان نفرت اور دشمنی کی خلیج بڑھتی گئی اور دونوں ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالنے کی فکر میں رہنے لگے. اور ایک دن اچانک ولیم کو جنگلی بخار میں آنت پہنچا اور ایک دن کے اندر ہی اندر ولیم کو ادموا کر دیا. لیکن روکوف کو ولیم کی کوئی پرواہ نہ تھی, بلکہ وہ چاہتا تھا کہ ولیم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے تاکہ وہ جین سے شادی کر سکے. اور ایک روز روکوف نے نہ جانے کیا سوچا کہ جین کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا,
جین میرے ساتھ چلو, آج میں ایک اور جگہ دیکھ کر آیا ہوں, ہم وہاں آرام سے رہ سکیں گے کیونکہ یہاں کی ہوا خراب ہو گئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے اس کمبخت ولیم کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودنی پڑے.
تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں ولیم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی.
چل ورنہ ماروں گا ایک تھپڑ.
نہیں, میں ہرگز نہیں جاؤں گی.
چل میرے ساتھ جائے گی کہ نہیں؟ اس کمبخت کو چھوڑ کر چل.
جین کے رونے اور چیخنے کی آوازیں ولیم کے کانوں تک بھی پہنچی, لیکن اس میں حرکت کرنے کی بھی سکت نہیں تھی. روکوف جین کو گھسیٹتا ہوا مارتا پیٹتا لیے چلا جا رہا تھا کہ اچانک درخت سے ایک شخص زمین پر کودا اور روکوف کے سامنے کھڑا ہو گیا. روکوف نے نظر اٹھا کے دیکھا تو دہشت کے مارے تھر تھر کانپنے لگا.
تم فکر مت کرو جین, یہ موزی اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس بدماش نے مجھے اتنا پریشان کیا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا جین. خیر, اب اسے دنیا کی کوئی طاقت مرنے سے نہیں بچا سکتی.
نہیں ٹارزن, ایسا نہ کرو, تم اسے معاف کر دو.
یہ شخص معاف کر دینے کے قابل نہیں ہے جین.
नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मुझे जान से मत मारो, मुझे माफ कर दो टार्जन, मुझे माफ कर दो।
माफ तुम्हें उसी सूरत में करूंगा कि तुम अब मेरे कैदी की तरह रहोगे। लो जेन, हाँ। इस रस्सी से अच्छी तरह इसके हाथ बांध दो। खबरदार, कोई चाल नहीं चलेगी। हाँ जेन, बांधो अच्छी तरह से हाथ इसके कस के।
अच्छा।
अब तुम मुझे पूरा किस्सा सुनाओ। जेन, तुम यहाँ पहुँची कैसे?
और फिर जेन की जबानी सारा किस्सा सुनने के बाद टार्जन को सदमे के साथ खुशी भी हुई। सदमा इस बात का कि इन लोगों को इतनी तकलीफें उठानी पड़ी, और खुशी इस बात की कि जेन की शादी अभी तक विलियम से नहीं हुई थी और न जेन विलियम से शादी करना चाहती थी। विलियम बुखार की हालत में बेहोश पड़ा था। टार्जन ने उसके मुंह पर छींटे दिए तो वो होश में आया और टार्जन को देखकर सख्त हैरान हुआ। फिर उसकी नजर जैन और रोकोफ पर पड़ी तो दोनों हाथों से सर पकड़कर कमजोर आवाज में बोला,
क्या मैं जिंदा हूँ?
हाँ,
मर चुका हूँ टार्जन।
हाँ
मेरे दोस्त।
हाँ हाँ विलियम।
जैन,
बोलो बोलो।
तुम दोनों मुझे माफ कर दो, वरना मेरी
नहीं, नहीं विलियम, तुम ठीक हो जाओगे।
ये कहकर विलियम ने अपने सरहाने से पीले रंग के कागज का एक पुर्जा निकाला और जैन की तरफ बढ़ा दिया, और इसके साथ ही विलियम ने एक जोरदार हिचकी ली और उसकी गर्दन एक तरफ ठलक गई।
नहीं विलियम!
जैन चीख मारकर टार्जन से लिपट गई और सिसकियां ले लेकर रोने लगी। इसके बाद जैन ने कागज का वो तय किया हुआ पुर्जा खोला और उस पर लिखी हुई इबारत पढ़ी। ये दारनों का वही तार था जो उसने पेरिस से टार्जन को भेजा था और जिसे टार्जन गोली बनाकर जमीन पर फेंक चुका था। तार में लिखा था, उंगलियों के निशानात से साबित हो गया है कि तुम ही नवाब जॉन क्लेटन के बेटे हो।
टार्जन, विलियम ने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई?
नहीं नहीं, मुझे ये बात पहले से मालूम थी, लेकिन
लेकिन क्या?
मेरा ख्याल था कि शायद तुम
हाँ बोलो बोलो ना,
तुम विलियम से शादी करना चाहती हो और इसलिए मैंने अपनी जायदाद वापस देने की कोशिश नहीं की।
यू आर ग्रेट टार्जन, रियली यू आर ग्रेट।
अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वसूली और उसके साथी टार्जन को ढूंढते हुए आ गए।
सरदार, जब हम आपकी तलाश में इधर आ रहे थे तो समंदर के किनारे हमने एक जगह कई सफेद चमड़ी वाले आदमी देखे थे। उन्होंने अपने रहने के लिए लकड़ी के मकान बना रखे हैं और उनके पास भी वैसे ही हथियार हैं जिनके मुंह से आग और धुआं निकलता है।
ओ बुसुली, हमें फौरन उस जगह ले चलो जहां तुमने उन सफेद चमड़ी वालों को देखा है।
आइए सरदार, चलिए अभी चलिए।
अब बुसुली टार्जन को लेकर साहिल के करीब चलने लगा। वो जूं जूं साहिल के करीब आता गया, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आखिर एक जगह रुककर उसने इन लोगों का जायजा लिया और सबसे पहले उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी तो वो बेअख्तियार चिल्ला उठा,
ओ मिसेस स्ट्रॉन्ग!
ओह माय गॉड, ये तुम हैं मिस्टर जॉन?
यस यस।
ओह जैन, तुम भी हैं?
हाँ मिसेस स्ट्रॉन्ग, हम सबको नई जिंदगी मुबारक हो।
माय गॉड, माय गॉड।
उनकी ये अचानक मुलाकात बेशुमार रासुओं और कैकहों का पैगाम लेकर आई। जैन अपने बाप के गले से चिमटी सिसक रही थी और मिसेस स्ट्रॉन्ग उसे तसल्लियां दे रही थी। डार्नो ने टार्जन को बताया कि असल में वो उसी को ढूंढने निकला था, लेकिन इत्तेफाक से मिसेस स्ट्रॉन्ग और उनके साथ ही मिल गए। अगर तुम आज भी ना आते तो हम लोग आगे बढ़ जाते, और रोकोफ के बारे में सबकी यही राय थी कि उसे मार दिया जाए। लेकिन टार्जन ने कहा,
नहीं, मैं इसे मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा।
टार्जन, तुम क्यों फिर खतरा मोल लेते हो?
तुम नहीं जानती जैन इस शख्स को, इस शख्स से वो तमाम राज वापस लिए जाएंगे जो इसने फ्रांसीसी फौजी अफसरों से हासिल किए हैं। डार्नो, रोकोफ को हथकड़ी लगवाओ और इसे अपने साथ ले जाओ, समझे?
डार्नो के कहने पर पुलिस ने रोकोफ को हथकड़ी लगा दी और चंद पुलिस अफसरों के साथ उसे जहाज पर भेज दिया गया। और जब जैन ने सब लोगों को ये बताया कि टार्जन नवाब जॉन क्लेटन का बेटा है तो उन लोगों की खुशी की इंतहा न रही। प्रोफेसर पोर्टर ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि जब तक मैं जैन की शादी टार्जन से नहीं कर दूंगा यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा। और अगले ही रोज टार्जन के उस केबिन में जो उसके वालिद की यादगार था, शादी की एक सादा सी तकरीब हुई। इस तकरीब ने जैन और टार्जन को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की जिंदगी का साथी बना दिया गया।
विश यू बेस्ट ऑफ लक मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन, ओह आई मीन मिसेस टार्जन,
आप दोनों को शादी का मुबारकबाद कबूल हो।
शुक्रिया बहुत बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया मिस स्ट्रॉन्ग।
टार्जन और जेन की शादी की खुशी में बुसुली कबीले के लोगों ने हाथी दांत का जखीरा